इशिका अब तक तो ईशानी के चेहरे के पीछे को छुपाने में कामयाब थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने आज उसे मुसीबत के घेरे में लाकर छोड़ दिया था। युविका ने इशिका को पकड़ लिया था, ऊपर से इशिका ने ईशानी के मरने की बात कही, तो उसके बाद से युविका को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इशिका की लाख सफाई देने के बावजूद युविका उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। इशिका के पास भी उसके साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। युविका इशिका को लेकर पार्किंग एरिया में पहुंची। इशिका ने फिर से उसे सफाई देने की कोशिश की। इशिका ने सख्त लहजे में कहा, तुम ये सब करके बहुत पछताने वाली हो। तुम्हारी इस हरकत से रूही की जान खतरे में आ सकती है। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना आता है, खासकर तुम जैसे फ्रॉड लोगों से जो उसकी माँ की जगह लेकर उसे प्रोटेक्ट करने का दावा करते हैं, युविका गुस्से में बोली। उसने इशारे से इशिका को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। जैसे ही इशिका आगे चलने को हुई, अचानक रूही दौड़कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। वो खुश होकर बोली, इशिका आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ थीं? बोलते हुए रूही ने कन्फ्यूजन से उसके चेहरे को देखा। उसने सिर खुजाते हुए पूछा, लेकिन मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब आई? रूही इशिका को जानती थी। ये देखकर युविका को हैरानी हुई। उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को पीछे छुपा लिया था ताकि रूही उसे देख न सके। युविका आगे आई और उसने रूही को इशिका से अलग कर दिया। फिर उसने रूही के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, बेटा, क्या आप इस औरत को जानती हैं? हाँ, जब हम घूमने के लिए गए थे तो मम्मा किसी काम से बाहर चली गई थी, तब इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। ये बहुत अच्छी हैं, रूही ने मासूमियत से जवाब दिया। रूही की बात सुनकर युविका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, बच्ची को भी अपनी बातों के जाल में उलझा लिया। ये मासूम कहाँ जानती है कि इसकी माँ को मारने के बाद ये उसकी जगह लेने के लिए वहाँ आई होगी। रूही के साथ युविका इशिका को पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने वहाँ कुछ दूर पर खड़े ड्राइवर को अपने पास बुलाया। उसने उसे ऑर्डर देने के अंदाज में सख्त लहजे से कहा, तुम रूही को स्कूल छोड़कर आओगे, उसकी टीचर से बात करके आना और उसे कहना कि शाम को तुम ही उसे लेने के लिए स्कूल जाओगे, उसके अलावा वो किसी और के साथ उसे स्कूल से ना भेजे। ड्राइवर को ऑर्डर देने के बाद युविका अपने घुटनों के बल बैठी और उसने रूही के चेहरे को प्यार से पकड़कर कहा, बेटा, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं आपके साथ स्कूल नहीं जा पाऊंगी। एक इमरजेंसी सिचुएशन होने की वजह से आपकी मम्मा को भी बाहर जाना पड़ा। क्या आप आज ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल चली जाएंगी? ठीक है, लेकिन मम्मा कहाँ गई? मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा, रूही ने पूछा। युविका और इशिका दोनों की आंखें नम होने लगी थीं। युविका ने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके धीरे से कहा, वो अभी गई नहीं है, तैयार हो रही है। तुम्हें देर हो रही है रूही, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। युविका ने जैसे तैसे समझाकर रूही को स्कूल भेज दिया था। फिर उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचते हुए ले जाने लगी। उस वक्त घर पर सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद थी और वो रूही को स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर लेकर गया था। जिस तरह से बदतमीजी से युविका इशिका को घसीट रही थी, ये देखते ही अभिमन्यु के आदमी हरकत में आ गए थे। अगले 5 मिनट में 4 आदमियों ने युविका और इशिका को घेर लिया था। उनके हाथ में गन थी। इशिका समझ सकती थी कि वो कौन थे। उसने उन्हें गन नीचे करने का इशारा करते हुए कहा, इस सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मिसेज राजवंश, सर ने हमें कहा था कि अगर हमें सिचुएशन थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हम आपके प्रोटेक्शन के लिए आगे आएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें मिस्टर राजवंश को इन्फॉर्म करना होगा, उनमें से एक गार्ड ने कहा। वो स्पेशल गार्ड थे जो किसी वक्त में आर्मी के लिए काम किया करते थे। इशिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद एक गार्ड ने दूसरी तरफ जाकर अभिमन्यु को कॉल लगा दिया था। वहीं थोड़ी देर में हुए इस हड़कंप को देखकर युविका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने इशिका से कहा, फिर तुम कहती हो मैं तुम पर यकीन करूं? इसने अभी अभी तुम्हें मिस्टर राजवंश कहा, कौन हो तुम और ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं तुम माफिया से तो नहीं? युविका के छोटे से दिमाग में काफी कुछ सोच लिया था। ये देखकर इशिका ने सिर पकड़ लिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब तो लगता है उसे आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर नक्श और वसुधा जी के साथ था। वैसे तो वो नक्श के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं करता था, लेकिन जब से उसे अभिमन्यु पर शक हुआ था वो उसके आसपास ही रहना चाहता था। अभिमन्यु ने भी इस चीज को नोटिस किया था, नक्श उसी की तरफ देख रहा था। अभिमन्यु पर ध्यान देने के चक्कर में नक्श का खाना टेबल पर गिर गया था। उसके इस हरकत पर अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, डाउट तो मुझे पहले से ही था कि तुम मुझ जैसा बनना चाहते हो, पर इतना डीपली फॉलो भी मत करो कि खुद के खाने पर भी ध्यान ना रहे। और आपको किसने कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ? एक्सक्यूज मी, मेरी खुद की पर्सनैलिटी है और जो आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है। 4 लोगों से जाकर पूछोगे तो पता चल जाएगा कि कौन किससे ज्यादा अच्छे से बात करता है, नक्श ने काफी बदतमीजी से जवाब दिया। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले वसुधा बीच में बोल पड़ी, हाँ, तुम्हारी तमीज यहाँ अच्छे से नजर आ रही है, अपने चाचू से ठीक से बात करो, तमीज में नहीं रह सकते तो जाकर अपने माँ बाप के पास रहो। नक्श वसुधा को भी उनकी बात का जवाब देना चाहता था। जब से ईशिका गई थी उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले उसकी नजर अभिमन्यु की तरफ गई, जो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। नक्श का मुंह बंद हो गया था, वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। इस बीच अभिमन्यु के पास गार्ड का कॉल आया। उसने कॉल पर कहा, सर मिसेज राजवंश प्रॉब्लम में है और मुझे लगता है आपके यहाँ आ जाना चाहिए, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो जल्दी से उठकर जाने लगा। नक्श उसके साथ जाना चाहता था इसलिए वो जल्दी से उठा, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखा तो नक्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। अभिमन्यु जल्दी से दौड़कर बाहर की तरफ गया तो गार्ड और ड्राइवर तैयार थे, पर अभिमन्यु ने जल्दी से ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया था। इशिका को कुछ होने का ख्याल अभिमन्यु को डरा रहा था और इस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। अभिमन्यु को अकेले जाता देखकर पृथ्वी गार्ड्स के साथ पीछे दूसरी गाड़ी में आने लगा। उनके लिए अभिमन्यु की सिक्योरिटी भी मायने रखती थी। लगभग आधे घंटे के अंदर अभिमन्यु की गाड़ी चौधरी मेंशन के आगे आकर रुकी। गाड़ी इतनी स्पीड में वहां आई थी कि युविका के तो होश उड़ गए थे। अचानक अभिमन्यु की काली लग्जूरियस गाड़ी उनके घर के आगे रुकी। उसकी गाड़ी के पीछे और आगे एक एक और गाड़ी थी जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे। जैसे ही अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकला, गार्ड सधे हुए कदमों से उसके पीछे चलने लगे। पहले भले ही अभिमन्यु राजवंश का चेहरा इंडिया में लोगों के लिए अनजान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वही राजवंश एम्पायर की बागडोर संभाल रहा था, इसलिए अभिमन्यु राजवंश का चेहरा दुनिया से छिपा हुआ नहीं था। हर कोई जानता था कि उसने कितनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। नकुल राजवंश और प्रशांत राजवंश के होने के बावजूद राजवंश एम्पायर का सीईओ वो था, तो कुछ तो बात थी उसमें। अभिमन्यु को वहां देखकर युविका को झटका सा लगा। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, अभिमन्यु राजवंश यहाँ क्या कर रहा है? गार्ड्स ने इस लड़की को मिसेज राजवंश कहा था, तो क्या ये इसकी पत्नी है?
वहीं अभिमन्यु जल्दी से दौड़कर इशिका के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। इशिका बिल्कुल ठीक थी। अभिमन्यु ने बिना किसी की परवाह किए उसे अपने सीने से लगा लिया था। मैं घबरा गया था, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ, सो जस्ट रिलैक्स, इशिका ने उसे सहलाकर कहा। अभिमन्यु के गले लगे हुए उसने महसूस किया, उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। इशिका को खोने का एहसास भी अभिमन्यु नहीं करना चाहता था। ये तो इशिका की जिद थी कि वो ईशानी की जगह लेकर मिसेस सिंघानिया तक पहुंचे, वरना अभिमन्यु उसे इसकी इजाज़त कभी नहीं देता। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और वो इशिका से अलग हुआ। फिर उसने युविका की तरफ घूर कर देखा। युविका की नज़र भी अभिमन्यु की तरफ थी, पर उसका ऑरा देखकर युविका की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभिमन्यु ने कोल्ड वॉइस में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? युविका ने जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और थूक निगलते हुए कहा, ये तो आप बताएंगे मिस्टर राजवंश, आखिर चल क्या रहा है? आपकी वाइफ मेरी फ्रेंड की जगह क्या कर रही है? अच्छा हुआ जो आप आ गए, आगे की बात पुलिस स्टेशन चलकर ही होगी। बैठकर बात करते हैं मिस चौधरी, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा और युविका के जवाब का इंतजार किए बिना इशिका का हाथ पकड़कर उसके साथ घर के अंदर जाने लगा। मजबूरन युविका को उनके पीछे आना पड़ा। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अगर मिस्टर राजवंश को लगता है कि वो पैसों के दम पर मेरा मुंह बंद कर पाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ ईशानी की हत्या का मामला है, मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मजबूरन युविका को उनके पीछे अंदर आना ही पड़ा। युविका थोड़ा पटकते हुए धीरे धीरे चलते हुए उनके पीछे आ रही थी, तो वहीं इशिका अभिमन्यु के साथ गार्डन में बने सिटिंग एरिया में पहुंच चुकी थी। इतने दिनों में इशिका अभिमन्यु के गुस्से से अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। वो अभिमन्यु को समझाना चाहती थी कि वो युविका के मामले में सख्ती ना बरतें। इशिका ने अभिमन्यु के हाथ को अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओ रियली? अभिमन्यु थोड़ा चिढ़कर बोला। वो इशिका पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर गहरी सांस लेकर शांत लहजे में कहा, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक टाइम पर नहीं आता तो वो लड़की तुम्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती और उसकी इस बेवकूफ़ी की सज़ा तुम्हें चुकानी पड़ती। लेकिन सब ठीक है ना, हम मामले को शांति से सुलझाते हैं। वो ईशानी की फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड इस दुनिया में नहीं रही है, तो क्या उसका इस तरह बिहेव करना हम गलत नहीं कह सकते हैं? इशिका ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा। अभिमन्यु तो जैसे इशिका की सुनने को तैयार तक नहीं था। उसने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और वार्निंग टोन में कहा, अब तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी इशिका, और मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली है और ये चीज़ मैंने पहले ही कह दी थी कि अगर बात तुम्हारी सेफ्टी पर आएगी तो फिर पूरा मामला मैं अपने हाथ में ले लूँगा। मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ कर लाऊंगा, पर अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। फिलहाल मुझ पर गुस्सा करने से ज्यादा जरूरी हमें युविका को हैंडल करना है, वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगी, इशिका ने शांत लहजे में कहा। लोगों ने अब तक मेरा शांत रूप ही देखा है, वो भूल गए हैं कि अभिमन्यु राजवंश कौन है, और अब उन्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है।
चाहे वो युविका चौधरी हो या राजवंश फैमिली का कोई भी शख्स, अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया। इशिका ने अभिमन्यु को समझाने की काफी कोशिश की, पर युविका वहां पहुंच चुकी थी। वो एक बार फिर अभिमन्यु को शांति से सब कुछ हैंडल करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। इसका मतलब साफ था कि अब वो इशिका की दखलअंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और सारी चीज अपने तरीके से हैंडल करने वाला था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। वहीं युविका एटीट्यूड को काफी हल्के में लेते हुए अंदर की तरफ आ गई थी। उसे लगा कि वो अभिमन्यु की इस हरकत पर उसे अच्छा खासा सुनाएगी, पर अंदर आने पर जब उसने अभिमन्यु के गुस्से भरे रूप को देखा तो वो फिर से घबरा गई थी। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जिस अभिमन्यु राजवंश के गुस्से के बारे में उसने थोड़ा बहुत सुना था वो वाकई सच था।